आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। देश के 130 जिले में मुख्य तौर पर चलाया जाएगा ये अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से संबंधित 238 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी लिया हिस्सा। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड की जांच पूरी। प्रदेश सरकार ने प्रधानाचार्य को हटाया, 3 अन्य निलंबित। और अगले 2 दिनों तक रात और सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत शीर्षक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक अपराध है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है।
आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए, तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के ना रह जाए बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है।
कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की शुरुआत भी की। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष में LHB कोच के साथ संचालित मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 600 से अधिक अनारक्षित डिब्बे जोड़े गए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे की गैर वातानुकूलित सामान्य श्रेणी और शयनयान सहित 10,000 डिब्बों के निर्माण की योजना है। श्री वैष्णव ने कल लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया में संपादकीय अंकुश की कमी के कारण अश्लील सामग्री का प्रसारण भी होता है। उन्होंने कहा कि संसद की संबंधित स्थायी समिति को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज का दौरा कर महाकुंभ से जुड़े विकास कार्यों का जायजा लिया और इससे संबंधित 238 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने वाले विभिन्न उपकरणों के साथ नगर निगम में नवनिर्मित कंट्रोल रूम का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकुंभ की तैयारियां 1 महीने पहले ही पूरी कर ली जाएंगी।
महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। समारोह के दौरान वर्ष 2024 में पास हुए UG और PG के विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेधावी छात्रों को मेडल दिए गए। दीक्षांत समारोह में कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि भी प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गौरवमयी इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दिखता है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन समय से ही उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज अंतिम दिन है। महोत्सव में कल तपन सिन्हा की फिल्म हारमोनियम सहित लगभग 70 फिल्में प्रदर्शित की गईं। शताब्दी सत्र में तपन सिन्हा की फिल्मोग्राफी, कथावाचन के अनूठे अंदाज, और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में NICU में हुए अग्निकांड मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य को पद से हटा दिया और 3 अन्य को निलंबित कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन माहुर को आरोप पत्र दिया गया है। वहीं कॉलेज के अवर अभियंता संजीत कुमार, NICU वार्ड की नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय और मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर को तत्काल निलंबित करते हुए आरोप पत्र दिया गया है। गौरतलब है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र में 15 नवंबर को हुए अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल हुए 8 और बच्चों की मौत के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या 18 पहुंच गई है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कन्नौज जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कल हुए हादसे में मृतक चिकित्सकों के प्रति शोक जताते हुए घायल चिकित्सक के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। कल सुबह हुए इस भीषण सड़क हादसे में 3 डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल लखनऊ में भारत इसराइल ड्राइव 3.0 का शुभारंभ किया। इसके तहत भारत से 5,000 श्रमिकों को इसराइल भेजा जाएगा। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुशल श्रमिकों को इसराइल में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
इसराइल में जो बच्चे गए हैं उनका अनुभव बहुत शानदार है। वो लगातार वहाँ काम कर रहे हैं, रोजगार के अपार अवसरों को मिल रहे हैं। और ये और भी अच्छी बात है कि वहाँ उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सैलरी के रूप में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक उनको ये काम मिल रहा है। भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं, आर्टिफिशियल में काम करते हैं, ड्रोन में काम करते हैं। जो जो ट्रेनिंग हमारी यहाँ से हो रही है ITI के माध्यम से, उन सब क्षेत्रों में वहाँ पे काम करने को उनको अवसर मिल रहा है।
मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक देर रात और सुबह के समय राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण ठंड महसूस की जा रही है। लखनऊ में चल रही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीत के साथ शुरुआत की। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मीडिया से बातचीत में PV सिंधु ने कहा कि जीत को लेकर वे आश्वस्त थीं।
महिला युगल में उत्तर प्रदेश की श्रुति मिश्रा और प्रिया की जोड़ी ने जीत दर्ज की। इस जोड़ी ने भारत की ही वैष्णवी और अलीशा की जोड़ी को हराया। चैंपियनशिप में कल से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
गोरखपुर के चंपा देवी पार्क मैदान में 30 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बोर्ड के परिक्षेत्रीय अधिकारी AK पाल ने बताया कि प्रदर्शनी में 110 स्टॉल लगेंगे। इस पर देश के कई राज्यों के खादी ग्रामोद्योग और ODOP उत्पादों का प्रदर्शन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। देश के 130 जिले में मुख्य तौर पर चलाया जाएगा यह अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से संबंधित 238 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी लिया हिस्सा। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड की जांच पूरी। प्रदेश सरकार ने प्रधानाचार्य को हटाया, 3 अन्य निलंबित। और अगले 2 दिनों तक रात और सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, तापमान में गिरावट से बढ़ने लगी ठंड। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।